प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपको हमारा नमस्कार। कार्यक्रम सत्य वचन में आपका हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, जैसा कि आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम पवित्र शास्त्र बाइबल का क्रम अनुसार अध्ययन किया करते हैं, जो हमें आध्यात्मिक बातों को समझने और आगे बढ़ने में हमारी सहायता करता है। इन दिनों हम पौलुस प्रेरित द्वारा लिखी गई इफिसियों के नाम पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए, इससे पहले कि इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, प्रस्तुत है एक मधुर संगीत रचना।
जंगली दरख्तों के दरमियां एक सेब के पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियां एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे मसीह, नजर आता है मुझे मसीह। सारे संतों के बीच में तू, सारे संतों के बीच में तू, हम करूं मैं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। शारों का हाँ तू सो संधि वादियों का, तू ही है नरगिस का शारों का, हाँ तू सो संधि वादियों का। संतों में तू है अति पवित्र, संतों में तू है अति पवित्र। कैसे कामिल और शान से भरा, कैसे कामिल और शान से भरा, हम करूं मैं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। बना खुशबूदार तेरे समान, बना खुशबूदार तेरे समान। हम करूं मैं तेरी ऐ प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और फिर से एक बार अपने मित्रों के साथ परमेश्वर के वचन में से सीखने और सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी स्वागत करता हूं जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से इफिसियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा कि कलीसिया एक भेद है, भेद का अनावरण, भेद की परिभाषा, सामर्थ्य और ज्ञान की प्रार्थना। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर और मधुर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम फिर से एक बार आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, मनन चिंतन करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें से हर एक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि जो वचन आज हम सुनते हैं उसे समझ सकें, ग्रहण कर सकें और अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने पाएं। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए भी है जो बीमार हैं, निराश हैं, अपने जीवन से थक चुके हैं, हार चुके हैं, कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, निसंतान हैं, भयानक बीमारी से ग्रसित हैं। पिताजी, आप उन पर अपनी दया दृष्टि कीजिए, ताकि हर एक जीवन आप में आशीषों को प्राप्त कर सके। आज के इस अध्ययन पर हम आपकी आशीष चाहते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें। पौलुस को प्रकाशन द्वारा यह भेद दिया गया था कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मीरास में साझी और एक ही देह और प्रतिज्ञा के भागी हैं। अब वह उनके लिए ज्ञान और सामर्थ्य प्राप्ति की प्रार्थना करता है। तो आइए हम देखें सामर्थ्य और ज्ञान के लिए प्रार्थना। इफिसियों की पत्री 3:14 में लिखा है, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं। ध्यान दीजिए, इसी कारण। अब प्रश्न है, किस कारण? इफिसुस की कलीसिया में गहरी रुचि के कारण। वह चाहता था कि परमेश्वर के अनुग्रह के प्रबंध के युग में जिसमें हम वास करते हैं, इफिसुस की कलीसिया प्रवेश करे और मसीह में परमेश्वर के अनुग्रह के धन का अनुभव करे। यह पृष्ठभूमि है। इस कारण उसने पद 1 से पद 14 के बीच उन प्रासंगिक बातों को लिखा है। हम इस तथ्य पर विचार कर चुके हैं कि पौलुस एक प्रार्थना करने वाला मनुष्य था। इस पत्री में पौलुस की यह दूसरी प्रार्थना है। कलीसिया को परमेश्वर की रचना या कविता, पवित्र आत्मा का मंदिर, युगों का भेद बताने वाले के बाद अब वह परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि ये महान सत्य विश्वासियों के जीवन में वास्तविकता बन जाए। मेरे मित्रों, इस पद में पौलुस की प्रार्थना का एक और गुण है। इसमें उसकी प्रार्थना करने की विधि प्रकट है। मैं बाल के खाल तो उधेड़ना नहीं चाहता, परंतु यहां देखिए, उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं। मैं यह नहीं कहता कि हमें अपनी सामूहिक प्रार्थनाओं में घुटने टेकना आवश्यक है, तथापि मैं चाहता हूं कि हम ऐसा करें तो अच्छा होगा। मेरी पहली सेवकाई के दौरान में मैं एक प्रार्थना सभा में उपस्थित हुआ। वह मेरी सर्वोत्तम प्रार्थना सभाओं में से एक थी। सभा के आरंभ में मैंने कहा, आइए हम प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाएं। मैंने आंखें बंद की तो मुझे सरसराहट की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि सब लोग बाहर जा रहे हैं। अतः मैंने आंख खोल करके देखा, मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। मैंने सोचा कि वे सब चले गए हैं। क्योंकि मैं प्रार्थना कर रहा था, इसलिए मैं रुका नहीं, प्रार्थना करता रहा। जब मैंने आमीन कहकर आंखें खोली तो देखता हूं कि सब लोग भूमि पर से उठ रहे हैं। वे प्रार्थना में घुटने टेके हुए थे। हमारी प्रार्थना सभा बहुत अच्छी रही। आप यह न सोचे कि उनके घुटने टेकने के कारण मैं उस सभा को अच्छी कह रहा हूँ, परंतु यह कहना चाहता हूँ कि मेरे विचार में उनके घुटने टेक कर प्रार्थना करने से बड़ी सहायता मिली थी। हमारे नए आराधनालयों में मखमली कुर्सियों और फर्श पर कालीनों के कारण हम अपने प्रभु के साथ संबंधों में बहुत कुछ खो रहे हैं। मेरे विचार में हमारी आराधनाओं में एक दूसरे के साथ अधिक मेल भाव तो होना चाहिए, परंतु परमेश्वर के लिए आराधना और श्रद्धा की अधिकता भी होना चाहिए। विशेष करके प्रार्थना के समय तो ऐसा ही होना चाहिए। प्राणी होने के कारण हमें अपने सृजनहार के समक्ष अपने उचित स्थान को ग्रहण करते हुए अपने घुटनों पर होना चाहिए। पौलुस ऐसी ही प्रार्थना करता था और मैं सदैव यही सोचता हूँ कि यह एक उचित विधि है। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं पहले ऐसा ही करता था, परंतु नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मैं अब समय नहीं दे पाता। मैं अपने अध्ययन कक्ष में मुंह के बल गिरकर प्रार्थना करता था। यह एक आश्चर्यजनक बात है कि ऐसी अवस्था प्रार्थना में कैसी सहायक होती है। मेरे विचार में यह मनुष्य के लिए अच्छा है। मैं इसके लिए आपको बाध्य नहीं कर रहा हूं, परंतु केवल आपका ध्यान इस ओर आकर्षित कर रहा हूं। पौलुस ऐसा ही करता था। वह आज हमारे लिए एक अति उत्तम उदाहरण है। लिखा है कि हमारा प्रभु यीशु गतसमनी की वाटिका में मुंह के बल गिरकर प्रार्थना कर रहा था। हमारे लिए यह अच्छा ही होगा कि हम परमेश्वर के समक्ष मुंह के बल गिरकर प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, मेरे विचार में यहाँ ध्यान देने योग्य एक और बात है। पौलुस पिता परमेश्वर से प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करता है। आप देखेंगे एक अध्याय के 17 पद में वह हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। हम देखेंगे कि यह उसका मंत्र था जो कठोर था, कि अपनी सब प्रार्थनाएं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता को चढ़ाए। अब कोई कहे आप तो बाल की खाल उधेड़ रहे हैं, तो यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 23 पद में प्रभु यीशु कहता है, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। मेरे प्रियो, शिष्य 3 वर्ष तक प्रभु यीशु के साथ थे और मेरे विचार में तो वे अनेक बातों में बच्चों के समान थे। उनका स्वभाव था कि अधिकांश समय मुझे दो। यीशु ने उन्हें चिताया कि वह उन्हें छोड़कर चला जाएगा और वे यीशु से नहीं मांग पाएंगे। उन्हें तब पिता परमेश्वर से यीशु के नाम में मांगना होगा। यीशु के कहने का अभिप्राय क्या था? उसके कहने का अर्थ था कि यीशु से सीधी प्रार्थना करने में हम एक मध्यस्थता से वंचित हो जाएंगे। यीशु के नाम में पिता परमेश्वर से मांगने का अर्थ है कि हम पिता परमेश्वर से विनती करें, जिसे प्रभु यीशु आपके और मेरे लिए परमेश्वर के सामने रखे। हमें अपने प्रार्थना के जीवन में बहुत सावधान रहना है। मैं अपने सेवा काल में इस बात को देख रहा हूं, जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं सोचा था। मैं एक सभा में था जहां एक भ्रमणशील भाई प्रार्थना करने के लिए आया था। वह सभा बहुत अच्छी प्रकार से आरंभ हुई थी। संगीत अति उत्तम था। पास्टर ने भी बहुत अच्छा संचालन किया था। अब उन्होंने इस भाई से प्रार्थना करने का निवेदन किया। उसने बहुत सी बातों के लिए प्रार्थना की। मैंने गिना कि उसने मेरे लिए 3 बार प्रार्थना की। जब उसने दूसरी बार मेरे लिए प्रार्थना की तो मेरे मन में प्रतिक्रिया हुई कि उसे प्रभु से दूसरी बार यह कहने की आवश्यकता नहीं थी। अब जब उसने 3री बार कहा तो मुझे ऐसा लगा कि वह प्रभु को अप्रसन्न कर देगा। वह उस प्रार्थना को बार बार सुनकर ऊब जाएगा। शायद भाई ने मुझे देखकर सोचा कि मुझे 3 बार प्रार्थना की आवश्यकता है, तथापि यह अन्य जातियों जैसा व्यर्थ का दोहराना था। प्रभु ने उसे पहली बार ही सुन लिया था। हमें अपने प्रार्थना जीवन में अत्यधिक सावधान रहना आवश्यक है। मेरे प्रियो, क्या आपने ध्यान दिया कि पौलुस की प्रार्थनाएं संक्षिप्त हैं? इफिसियों की इस पत्री में ये दो प्रार्थनाएं और फिलिपियों की पत्री में उसकी प्रार्थना सब संक्षिप्त हैं। सच तो यह है कि धर्मशास्त्र में जितनी प्रार्थनाएं हैं सब संक्षिप्त हैं। प्रभु यीशु ने कहा कि हमें अन्य जातियों की नाई प्रार्थना में बातों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। वे सोचते हैं कि अधिक बातें करने से उनकी प्रार्थना सुन ली जाएगी। इसराइल के लिए मूसा की प्रार्थना केवल 3 पदों में व्यक्त है। कर्मेल पर्वत पर जब एलिय्याह बाल के पुजारियों के विरुद्ध अकेला परमेश्वर के लिए खड़ा था, उसने एक महान प्रार्थना की जो केवल 1 पद की है। नहमिया की प्रार्थना भी 7 ही पदों की है। यूहन्ना अध्याय 17 में प्रभु यीशु की प्रार्थना को पढ़ने में केवल 3 मिनट लगते हैं। सबसे छोटी प्रार्थना शमौन पत्रस की है। मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 30 पद में, हे प्रभु मुझे बचा। उसने यह प्रार्थना उस समय की थी जिस समय वह गलील सागर की लहरों में डूब रहा था। कुछ लोगों का कहना है कि यह इतनी छोटी है कि इसे प्रार्थना नहीं कहा जा सकता। मेरे मित्रों, यह प्रार्थना ही है और इसका उत्तर उसे तुरंत मिला था। यदि पत्रस वैसा प्रार्थना करता जैसे हमारे प्रचारक रविवार की सुबह करते हैं, हे प्रभु तू सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है आदि आदि, तो वह अपनी याचना तक पहुंचते पहुंचते 20 फुट पानी के नीचे चला जाता। प्रार्थना छोटी और काम की बात होना चाहिए। इफिसियों के पत्र 3 अध्याय उसके 15 पद में लिखा है, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। परमेश्वर के पास एक अद्भुत परिवार है। अधिकांश लोगों का सोचना है कि वह मैं और मेरा हम 4 तक ही सीमित है, परंतु सच तो यह है कि उसका परिवार इससे बड़ा है। कुछ लोग सोचते हैं कि कलीसिया में उसका गुट ही है जिसकी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। कुछ का सोचना है कि उनके स्थानीय कलीसिया ही पवित्र जन है। कुछ लोग ऐसे लोग भी हैं जो सोचते हैं कि उनकी कलीसिया ही परमेश्वर का परिवार है। कुछ लोग सोचते हैं कि पेंतिकोस्त के दिन से कलीसिया के उठाए जाने के दिन तक उधार पाने वाले ही कलीसिया हैं। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने तो कलीसिया के अस्तित्व से बहुत पहले ही मनुष्यों का उद्धार किया था और कलीसिया के उठाए जाने के बाद भी मनुष्यों का उद्धार करेगा। परमेश्वर के परिवार में अन्य सदस्य भी हैं। स्वर्गदूत भी उसके परिवार में है। उसने बुद्धि जीवों की रचना भी की है जिन्हें प्रेरित यूहन्ना ने देखा और कहा कि उनकी संख्या अनगिनत थी। वे सब परमेश्वर के परिवार में हैं। आगे हम पढ़ते हैं इफिसियों के पत्र 3 अध्याय उसके 16 से 19 पद में लिखा है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। यहां पर देखिए वह फिर उसकी महिमा के धन के आधार पर प्रार्थना करता है, न कि उसकी महिमा के धन में से। यदि वह महिमा के धन में से दे तो वह रॉकफेलर के समान होगा जो अपने गोल्फ का सामान उठाने वाले को 10 का सिक्का देता था। यहां पर पौलुस इफिसियों की कलीसिया के लिए प्रार्थना में 4 निवेदन रखता है। आइए देखें। पहला है कि विश्वास उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाएं। विश्वासी का आत्मिक स्वभाव उसके शारीरिक व्यक्तित्व के समान ही प्रार्थनाओं की आवश्यकता में होता है। कितनी बार ऐसा होता है कि शरीर पर तो ध्यान दिया जाता है परंतु आत्मिकता पर ध्यान देने से हम चूक जाते हैं। पौलुस आंतरिक मनुष्यत्व के लिए प्रार्थना करता है क्योंकि वह जानता है कि बाहरी मनुष्यत्व समाप्त होता जाता है। मसीही जीवन जीने के लिए अनुग्रह में विकास करने के लिए और पूर्ण परिपक्वता प्राप्त करने के लिए सामर्थ्य की आवश्यकता है, जो पवित्र आत्मा का कार्य है। हम बाहरी मनुष्यत्व के लिए तो बहुत प्रार्थना करते हैं, मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं। ये करना अच्छी बात है, पौलुस भी करता था, वह अपने लिए भी प्रार्थना करता था। उसने 3 बार प्रार्थना की कि परमेश्वर उसकी देह से कांटा निकाल दे। यह जानना बहुत अच्छा है कि परमेश्वर प्रार्थना सुनता है और प्रार्थनाओं का उत्तर भी देता है, परंतु हमें स्मरण रखना है कि विश्वासी के आत्मिक भाग को भी प्रार्थना की उतनी ही आवश्यकता है जितने की उसके शरीर को होती है। केवल पवित्र आत्मा ही विश्वासी के जीवन और पूर्ण परिपक्वता के विकास के लिए सामर्थ्य प्रदान कर सकता है। दूसरी बात हम देखते हैं, उसका दूसरा निवेदन है, विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, अर्थात मन में वही विचार आना जो मसीह सोचता है, तुम मुझ में और मैं तुम में। गलातियों की पत्री 2 अध्याय उसके 20 पद में पौलुस कहता है, मसीह मुझ में जीवित है। मसीह में, इस पत्री का सर्वोच्च शब्द है। इसका दूसरा रूप है, मसीह मुझ में जीवित है। मसीह में हमारी अवस्था है और मसीह मुझ में मेरी संपदा है। यह व्यवहारिक पक्ष है। 2 कुरिन्थियों की पत्री 13 अध्याय के 5 पद में वह कहता है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। मेरे प्रियो, मसीह एक अस्थाई आगंतुक नहीं है, वह पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में अस्थाई निवास करने आया है। योहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 5 पद में यीशु ने कहा, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अब हम तीसरी बात देखते हैं, पौलुस की प्रार्थना में तीसरा निवेदन है कि विश्वासी मसीह के उस प्रेम को जान सकें जो ज्ञान से परे है। वह प्रार्थना करता है कि वे प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर समझने की शक्ति पाएं। जड़ पकड़कर जीवन से संबंधित है और नेव डालकर दृढ़ता को दर्शाता है। यह सब पवित्र जनों के लिए है। पौलुस चाहता था कि वे प्रभु यीशु के प्रेम को जानें जो ज्ञान से परे है। प्रभु यीशु के प्रेम की विशालता परमेश्वर का प्रेम ही है। इस विमोचन मंच से हम उसको नापना आरंभ कर देते हैं जो अथाह है, और उसे समझना आरंभ कर देते हैं जो ज्ञान से परे है। जी हाँ, यह विश्वास के जीवन की अनेक विरोधाभासी स्थितियों में से एक है। चौड़ाई, मसीह की बाहें संपूर्ण संसार में पहुंचती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 9 पद में वह कहता है, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। फिर यूहन्ना 6 उसके 37 पद में वह कहता है, जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। तब हम देखते हैं लंबाई, इसकी लंबाई जगत की नींव पड़ने से पूर्व वध किए गए मेमने से लेकर अनंत काल तक है। तब है गहराई, क्रूस पर मसीह की मृत्यु तक जाती है। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसके 8 पद में वह कहता है, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सहली। तब आता है ऊंचाई, इसकी ऊंचाई परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचती है। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय के 6 पद में, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। मेरे प्रियो, मसीह के प्रेम के व्यापक अनुभव में केवल पवित्र आत्मा ही विश्वासी को ला सकता है। अब क्योंकि यह अनंत है, इसलिए मनुष्य की बुद्धि से परे है। अब आखिरी और चौथी बात, उसका चौथा निवेदन ज्वलंत जोश के साथ आता है। परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। प्रभु यीशु ऐसा ही भरा हुआ था। मसीह के प्रेम को अंतर्ग्रहण करने के अनुपात में ही हमें परमेश्वर की सारी भरपूरी मिलती है। मित्रों, हम इफिसियों के पत्री 3 अध्याय उसके 20 और 21 पद में पढ़ते हैं, अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे, आमीन। मेरे मित्रों, यह स्तुति गान तथा आशीर्वाद है। यहाँ पौलुस की प्रार्थना का समापन है। यह इस पत्री के प्रथम मुख्य भाग का भी समापन है। यह आत्मिक स्तुति का महान उद्गार है। जिस पर टिप्पणी की जाए तो वह धूमिल हो जाएगा। हम तो आत्मिक वरदानों के छोर को भी नहीं छुपाते हैं जो परमेश्वर अपनों को देना चाहता है। यह कैसी अद्भुत और महान बात है। वह हमें बहुतायत से अधिक देना चाहता है। वह कैसा भला है और हम कितने छोटे हैं। हम उसकी आशीषों को संभाल नहीं सकते। मेरे मित्रों, आज हम अपने जीवन में झांक करके देखें, क्या हम उन बातों को समझ पा रहे हैं, क्या जिसे पौलुस आज हमें बताना चाहता है प्रार्थना के माध्यम से हम उस तरीके से उसके पास आते हैं। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की निकटता में आते हैं, उससे मांगते हैं, निश्चय ही वह मुझे और आपको देता है, उन आशीषों की भरपूरी देता है जिसे हम संभाल नहीं सकते। आइए आज हम प्रभु की निकटता में आए, उसके वचन के प्रकाशन में अपने आप को झांक करके देखें कि मैं कहाँ हूँ, और निश्चय जाने कि परमेश्वर हमारी अवश्य ही सहायता करेगा। यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज की इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने आत्मिक जीवन में अवश्य ही लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओं, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
घबराहट की लहरों से डर, डूबूं दुख के सागर में, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, मुझे अपने सीने से लगा, मुझे अपने सीने से लगा। हम करूं मैं तेरी है प्रभु, अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं।